अनोखी है, अनमोल है, सपनों में ले जाएंगी ढेर सारी कहानियाँ, अब नानी हमें सुनाएंगी,
क्योंकि
ये है नानी की कहानियाँ, क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ।
नानी नानी हम आ गए।
अच्छा तो सुनो प्यारे बच्चों, एक छोटे से सुंदर से गांव में एक नन्ही सी परी फूलों जैसे गालों वाली बच्ची रहा करती थी। उसका नाम था गुड्डू रानी।
वाओ नानी।
हाँ तो बच्चों, गुड्डू रानी सुबह की प्रार्थना के समय उठती, नहा धोकर अपनी माँ के साथ प्रार्थना करती और खाना खा के स्कूल जाने के लिए तैयार होती। स्कूल में मन लगा कर पढ़ती, अपनी टीचर की हर बात पूरे ध्यान से सुनती, इसीलिए उसे पाठ भी अच्छी तरह याद हो जाते और वो परीक्षा में सदा अच्छे नंबर से पास होती। स्कूल के सारे टीचर्स गुड्डू से बहुत ही प्यार करते थे। गांव के लोग, उसके दोस्त, रिश्तेदार सब उसे बहुत पसंद किया करते थे, प्रेरणा देते, आशीर्वाद देते। परंतु बच्चों, कभी कभी गुड्डू बहुत उदास हो जाती। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि गुड्डू के पिताजी शहर से बहुत दूर अपने ही देश के एक कार्यालय में नौकरी करते थे। वो साल भर में केवल 15 दिनों के लिए आते, लेकिन जब आते तो गुड्डू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ, प्यारे प्यारी कहानियों की पुस्तकें लाते और गुड्डू का तो जैसे उत्सव ही हो जाता। जितने दिन गुड्डू के पिताजी घर में रहते तब तक वो हर समय हंसती रहती, लेकिन जिस दिन वो वापस चले जाते गुड्डू का मन उदास हो जाता। वो स्कूल आते जाते बड़ी आशा से उस पक्की सड़क को देखा करती, जिस पर आती जाती गाड़ियां, बसें किसी का मेल करवाती है तो किसी को दूर ले जाती है। फिर एक बार ऐसा हुआ, साल बीत गया, 3 महीने और बीत गए, परंतु गुड्डू के पिताजी घर नहीं आए। फिर गुड्डू ने देखा उसकी माँ भी चुपचाप उदास उदास रहने लगी है। एक दिन गुड्डू ने अपनी माताजी से पूछा, माँ आप हर समय उदास क्यों रहती हो? माँ ने कहा, मैं? नहीं बेटे, मैं तो उदास नहीं रहती। तो गुड़िया ने कहा, परंतु हर समय चुप तो रहती हो ना? तो माँ ने जवाब दिया, अरे नहीं, जिसे भगवान ने तेरे जैसी प्यारी सी बेटी दी हो उसे उदास या चुप रहने की क्या आवश्यकता है? तो गुड़िया पलट के बोली, अच्छा ये बताओ इस बार पिताजी घर क्यों नहीं आए? तो माँ ने कहा, देखो बेटी, जिस ऑफिस में वो काम करते हैं ना उसमें काम अधिक होता है, छुट्टी नहीं मिल रही होगी इसीलिए नहीं आए। तो गुड़िया ने कहा, उन्होंने चिट्ठी भी नहीं लिखी। माँ ने जवाब दिया, अरे पिछले महीने तो उनकी चिट्ठी आई थी। तो गुड़िया ने कहा, इस महीने क्यों नहीं आई? माँ ने जवाब दिया, आ जाएगी बेटी, आ जाएगी, जाओ अब थोड़ी देर बाहर खेलो। टीचर सिखाते थे कि माँ बाप जो कहे ना उसे तुरंत मान लो, इसीलिए गुड्डू चुपचाप घर से बाहर निकल आई और बाहर के गार्डन में आ गई। वहां पर चारों तरफ हरियाली थी। ये गार्डन पहाड़ों से घिरा हुआ था, हर तरफ हरे हरे पत्ते, फूल ही फूल, सुगंध ही सुगंध, और फूलों के चारों ओर उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां। ऐसे में गुड्डू ने देखा एक प्यारी सी नन्ही सी तितली गुड्डू के नजदीक से उड़ती हुई निकली और फूलों से भरी हुई डाली पर बैठ गई। गुड्डू ने उसे देखा और बोली, प्यारी तितली इधर आना, दीदी तितली इधर आना, मेरे पिताजी का संदेश लाना, दीदी तितली इधर आना। और फिर पता है क्या हुआ बच्चों? तितली ने ये शब्द सुने और गुड्डू की तरफ देखा और उड़ी और गुड्डू के पास आके एक पत्थर पर बैठ गई। और फिर तितली ने गुड्डू से पूछा, मुझे बुला रही हो तुम? मुझे आवाज दे रही हो? तो गुड़िया ने जवाब दिया, हाँ तितली, तुम ही को तो आवाज दी है मैंने। तितली ने पूछा, बोलो क्या बात है? गुड़िया ने कहा, तुम अपने पंखों से उड़ती हुई बहुत दूर दूर तक जाती होगी ना? तो तितली ने जवाब दिया, हाँ मैं पूरे गार्डन में घूमती हूँ, मगर इस गार्डन से बाहर नहीं जाती। तो गुड़िया ने कहा, नहीं जा सकती?
फिर तुम मेरा काम नहीं कर सकती दीदी तितली।
तो तितली ने कहा, काम तो बताओ बहन। गुड़िया ने कहा, मेरे पिताजी यहाँ से बहुत दूर नौकरी करते हैं, वो बहुत दिन से घर नहीं आए, मैं उन्हें एक चिट्ठी भेजना चाहती हूँ। ये सुन के तितली ने कहा,
ये काम तो मैं नहीं कर सकती प्यारी बच्ची, मैं नहीं कर सकती, मेरे पंख जितने सुंदर हैं उतने कमजोर भी,
ये ना तेज हवा सहन कर सकते हैं और ना गर्मी।
गुड़िया ने कहा, अच्छा ठीक है।
तो तितली ने कहा, फिर भी अच्छी बच्ची, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, तुम जैसी प्यारी बच्ची की उदासी मुझसे सहन नहीं होती, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर तितली उड़ी बच्चों और गुड्डू उसके पीछे पीछे चलने लगी। तितली कभी गुड्डू के साथ साथ उड़ने लगती, कभी उससे आगे निकल जाती। आमों के बाग से गुजरते हुए नाले के पास पहुंच गई। तितली तो उड़ती हुई नाला पार कर गई, परंतु गुड्डू मुश्किल से पानी के लहरों में बैलेंस बनाते हुए दूसरे किनारे पर पहुंची। पानी में उसके कपड़े बुरी तरह से भीग गए थे, फिर भी गुड्डू तितली के पीछे भाग रही थी। समय के साथ तितली एक पुराने किले में प्रवेश कर गई, गुड्डू अब भी उसके पीछे थी। अंदर पहुंचने के बाद तितली टूटे हुए दरवाजे पर बैठ गई और गुड्डू छत की तरफ देखने लगी, जो कई जगह से टूटी हुई थी। फिर गुड्डू ने तितली से कहा,
यहाँ क्यों आई हो दीदी तितली?
तो तितली ने जवाब दिया,
बताती हूँ, देखो यहाँ दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट उल्लू रहता है, मैं उसी से ये पूछने आई हूँ कि तुम्हारे पिताजी को चिट्ठी कैसे भेजी जाए।
तो गुड़िया ने खुश होके कहा, ठीक है ठीक है, फिर तुम इंटेलिजेंट उल्लू से बात करो। तितली ने कहा,
उल्लू भाई, उल्लू भाई।
उल्लू की आवाज वहां से आई, कौन है भाई? किसने दिन के उजाले में हमारी नींद खराब करने की हिम्मत की है?
तो तितली ने जवाब दिया,
मैं तितली हूँ, आपसे वार्ता करने आई हूँ उल्लू जी।
उल्लू ने कहा, ओहो तितली, अभी नहीं शाम को आना, तुमको तो पता ही है कि हम लोग दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं।
तितली ने कहा,
काम बहुत इम्पोर्टेंट है उल्लू जी।
उल्लू ने जवाब दिया, ओहो तितली, मैं तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता।
तो तितली ने कहा,
ये नन्नी मुन्नी बच्ची जो मेरे साथ खड़ी है ना?
उल्लू ने झट से कहा, हाँ, भूखी है क्या?
तितली ने कहा, नहीं नहीं, इसके फादर शहर में हैं, बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं, वो किसी पक्षी के द्वारा संदेश भेजना चाहती है कि वो घर लौट आए।
गुड़िया ने कहा,
हाँ उल्लू जी।
तो उल्लू ने कहा, बच्ची तुम मुझे जी मत कहो, मुझे पता है तुम आदमी लोग हम उल्लुओं की प्रजाति को मूर्ख समझते हो।
ये सुन के गुड़िया ने जवाब दिया,
लेकिन मैं नहीं समझती।
उल्लू ने कहा, तितली तुम ऐसा करो कि गुड्डू को कबूतर के पास ले जाओ, वो दूसरों के काम आते हैं, मुझे नहीं पता है इसके पिताजी का।
तो तितली ने कहा,
वो इस समय कहाँ मिलेंगे?
उल्लू ने जवाब दिया, बगीचे के पुल के नीचे दोपहर के समय आराम करते हैं, वो अवश्य आते हैं वहाँ।
तितली ने जवाब दिया,
धन्यवाद उल्लू जी, मैं अभी उसके पास जाती हूँ, भगवान भला करे आपका।
और बच्चों, एक बार फिर तितली आगे आगे और गुड्डू उसके पीछे पीछे कच्चे रास्ते से चलती नदी के पुल की दिशा में चलने लगी।
पुल के नजदीक पहुँचते ही तितली ने कहा,
तुम थोड़े समय के लिए यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं कबूतर को देखती हूँ।
गुड्डू रुक गई और तितली पुल के उस ओर की दिशा में चली गई जहाँ बहुत से कबूतर रहते थे। फिर थोड़े ही समय के बाद तितली वापस लौटी और कबूतर उसके साथ था, सर से पैर तक गोरा, छोटी सी चोंच, छोटी सी नन्नी नन्नी गोल गोल आंखें।
वो नजदीक आते ही आराम से गुड्डू के कंधे पर बैठ गया और अपनी चोंच उसके कान के नजदीक लाकर बोला,
गुटरगू गुटरगू।
तितली ने बताया, तुम अपने पिताजी को बहुत याद करती हो।
तो गुड़िया बोली, हाँ कबूतर भैया, मुझे अपने पिता से बहुत प्रेम है।
कबूतर बोला, अरे माँ बाप से प्यार किसे नहीं होता। एक बार मेरे पापा कबूतर को एक शिकारी ले गया था। विश्वास करो, मैंने 4 दिनों तक ना दाना खाया था ना पानी पिया था।
कुटरगू कुटरगू।
ये सुन के तितली ने कहा,
कबूतर भैया फिर इस बच्चे के बारे में क्या सोचा तुमने?
कबूतर ने जवाब दिया, सोचना क्या है तितली, महोदय कबूतर हो या मनुष्य, उल्लू हो या तितली, सभी एक भगवान के हैं, सभी एक धरती पर रहते हैं और सभी को एक दूसरे के काम आना चाहिए।
तितली ने झट से कहा, थैंक यू कबूतर भैया।
कबूतर ने जवाब दिया, अच्छा बेटी तुम अपने पिताजी का पता बताओ।
फिर क्या होता है?
फिर क्या था, गुड्डू ने जल्दी से कबूतर को अपने पिता का पता बताया और कबूतर उसे भरोसा देकर तेजी से उड़ गया। रात दिन की परवाह किए बिना वो उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा। जब भी थकान होती तब धरती की तरफ उतर आता, थोड़ा आराम कर लेता, दाना खाता, पानी पीता और फिर शहर की ओर उड़ने लगता। अंत में यात्रा के 5वें दिन कबूतर को बहुत ऊंचाई से वो शहर दिखाई देने लगा जहाँ गुड्डू के पिता रहते थे। अचानक ही उसे कुछ महसूस हुआ और उसने सर उठाकर जो देखा तो एक बाज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। बाज को देखते ही कबूतर डर गया और वो सोच रहा था, अगर मैं इस बाज के हाथों मर गया तो गुड़िया का संदेश उसके पिता तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। कबूतर ऊंची आवाज में एकदम से चीखा, कुटरकू कुटरकू। अरे बाज, तुम मेरा शिकार करने से पहले मेरी एक बात सुन लो, मैं एक छोटी सी लड़की की चिट्ठी लेकर उसके पिता के पास जा रहा हूँ, मुझे ये काम कर लेने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ काम होते ही मैं खुद तुम्हारे पास चला आऊंगा। वो बच्ची अपने पिता के लिए बहुत परेशान है, मैंने उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। ये सुनकर बाज ने कहा,
हा मुझ पर आज तक किसी के आंसू का असर नहीं हुआ कबूतर, मैं किसी भी तरह तेरा शिकार करके ही रहूंगा।
तो कबूतर ने कहा,
गुटरगू गुटरगू, तुम क्यों मेरा शिकार कर रहे हो, प्लीज मुझे मेरे काम से मत रोको।
बाज ने कहा, शिकार के पास पहुंचकर उसको छोड़ देना मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है कबूतर।
तो कबूतर ने कहा, ठीक है बाज, तुम अगर इतने ही कठोर दिल वाले हो तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं एक अच्छे काम से जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हारे भयानक पंजों से मुझे भगवान ही बचाएगा।
गुटरगू गुटरगू।
कबूतर ने बाज से ये कहा और तेज उड़ने लगा।
बाज उस पर झपका। कबूतर ने बाज को पास आते देखकर हवा में कलाबाजी दिखाई, धरती की तरफ गोता लगाया। बाज जो थोड़ा आगे निकल गया था तेजी से वापस लौटा और फिर कबूतर की तरफ लपका, परंतु कबूतर थकान के बावजूद अपने शरीर की पूरी शक्ति से उड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू और मन से बस एक ही प्रार्थना निकल रही थी,
हे भगवान, अगर बाज ने मेरा शिकार कर लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बस मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं ये चिट्ठी उसके फादर तक पहुंचा सकूं।
और फिर बच्चों थोड़ी ही देर में आकाश में घने बादल छा गए, फिर अचानक से जोरों की बिजली कड़की और बाज
आ, ओ, कबूतर आ, आ, करता हुआ
गायब हो गया। और इसी तरह से बच्चों बाज का अंत हो गया। कबूतर ने भगवान को धन्यवाद किया और शहर की दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। और बहुत मुश्किलों के बाद में उसने गुड्डू के पिता को देख ही लिया। गुड्डू के पिता अपने छोटे से घर के आंगन में चादर ओढ़े आंखें बंद किए चारपाई पर लेटे हुए थे। कबूतर ने दीवार पर बैठकर उनको देखा और फिर उसने थके थके शब्दों में कहा, गुटरगू गुटरगू, क्या आप गुड़िया के पिताजी हैं? गुड़िया के पिताजी ने कहा,
कौन कौन है, कौन हो तुम?
कबूतर ने जवाब दिया, मैं आपके गांव से आया हूँ। गुड़िया के पिताजी ने कहा,
मेरे गांव से आए हो?
कबूतर ने जवाब दिया,
हाँ भाई, गुड़िया, गुड्डू।
गुड्डू के पिताजी ने कहा,
गुड्डू मेरी बेटी का नाम है, तुम उसे कैसे जानते हो?
कबूतर ने जवाब दिया,
मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम इस साल घर नहीं पहुँचे और गुड़िया तुम्हारे लिए बहुत उदास है, कुटरगू कुटरगू।
गुड़िया के पिताजी ने कहा, मैं जानता हूँ बेटियाँ अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कबूतर मैं 4 महीने से बिस्तर पर हूँ। केमिकल फैक्ट्री में काम करने की वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगा हूँ और बहुत कमजोर हो गया हूँ, इसीलिए बिस्तर से उठ नहीं पाता हूँ। लेकिन ये सब कुछ मेरा अपना किया धरा है, मैं अपनी बेटी पत्नी गांव सबको छोड़कर ज्यादा धन के लालच में शहर आ गया था। शहर ने मुझे सब कुछ दिया, बहुत धन दिया और मुझे बीमार कर दिया, परंतु अब मैं ठीक हूँ, बहुत जल्द मैं गांव वापस चला जाऊंगा। तो कबूतर ने जवाब दिया,
गुटरगू गुटरगू, अब ठीक हो गए हो तो आज ही घर लौट जाओ।
गुड़िया के पिता ने जवाब दिया, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा,
बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। कबूतर, तुमने मेरी बच्ची के खातिर जो यात्रा की है और परेशानियाँ उठाई हैं, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
कबूतर ने कहा, गुटरगू गुटरगू, ये मत कहो, भगवान की इच्छा के अनुसार जो कष्ट उठाया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता, भगवान की तरफ से उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। और फिर पता है क्या हुआ बच्चों? एक रात गुड्डू के दरवाजे पर कोई आया। गुड्डू जाग रही थी, उसने पूछा,
कौन है?
और पलटकर जो आवाज आई वो उसके पिता की थी, मैं हूँ गुड्डू बेटी।
गुड़िया बोली, पिताजी, माँ पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए माँ।
गुड्डू के पिता खुश होकर गले लगकर बोले, मेरी बच्ची। गुड़िया ने कहा, पिताजी ये आपको क्या हुआ? पिताजी आपको क्या हुआ? गुड्डू के पिताजी ने जवाब दिया, कुछ नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं, मैं अब सदा के लिए गांव आ गया हूँ। मेरी बच्ची, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। गुड्डू, हम एक दूसरे के साथ इसी गांव में रहेंगे। फिर बच्चों गुड्डू अपने पिता के साथ हंसी खुशी गांव में रहने लगी। कैसी लगी मेरी कहानी?
वाव नानी, कितनी अच्छी कहानी थी।
अब मैं चलती हूँ, जब अगली बार मिलूंगी ना तब दूसरी कहानी सुनाऊंगी, ठीक है?